बेस्ट है पुरुषार्थ या आत्माओं का समय कहाँ बेस्ट होता है? जो महान पुरुषार्थी है उनका समय कहाँ बेस्ट होता है? जो सारी मर्यादाओं का पालन कर रहे हैं, संपूर्णता से, संपूर्ण संपूर्ण रीति से पालन कर रहे हैं, ऐसी आत्माओं का समय कहाँ बेस्ट होता है? नागेश सूक्ष्म में कहाँ व्यस्त हो रहा है?
संसाधनों में
बाबा ने आज के मुद्दे में कहा है आकर्षण में वस्तु की आकर्षण में टाइम लगाते हैं,
प्राप्ति
जितना टाइम उसमें लगाते उतना अविनाशी प्राप्ति और समय में उतना टाइम नहीं लगाते। महान तीव्र श्रेष्ठ पुरुषार्थियों का समय भी कहीं कहीं वेस्ट होता है, वो हमको लीकेजेस बंद करना है। सुबह से अगर चालू करो तो कहाँ कहाँ जाता है? वापस चिंतन करो, थोड़ा कहाँ कहाँ जाता है? अपना अपना
बातों में,
वो सभी बातें जिनमें ज्ञान और योग नहीं है, वो सभी बातें जिनमें ज्ञान और योग का संबंध नहीं है, वो सभी व्यर्थ के खाते में जाते, वो सभी बातें जिसमें पुरुषार्थ की चर्चा नहीं है वो सभी व्यर्थ के खाते में जाते हैं। वो सभी बातें जो दूसरों से संबंधित है, व्यक्तिगत जीवन से संबंधित है, वो सभी व्यर्थ है। तो जहां जहां तो सबसे पहला है बातचीत वार्तालाप, ये एक मुख्य है कि जहां पर आत्मा का समय जाता है। मौन का बहुत बड़ा महत्व है, मौन और एकांत ये योगी के सबसे बड़े मित्र हैं। मौन और एकांत, महात्मा गांधी का जो आश्रम है वहां पर सोमवार को मौनवार कहते हैं, मौनवार। वहां पे जितने साधक है, जितने लोग रहते हैं, वो सोमवार के दिन मौन रखते हैं। मौन का अध्यात्म में बहुत ज्यादा महत्व है। हम यहाँ मन के मौन की बात नहीं कर रहे, मुख का मौन, वाचा का मौन, क्योंकि मुख से बहुत सारी ऐसी बातें निकलती है जिनका निकलने का आदत है उसको, और उससे कुछ फायदा कुछ नहीं, वो एक संस्कार बन गया। तो जिनको संभव है वो सप्ताह में एक दिन मौन रखा करें। हम देखेंगे,
हाँ
मौन डे, मौन डे, वो जो मैंने कहा ना मौनवार, मौनवार कहो या मौन डे कहो एक ही चीज। तो मौन में आत्मा की शक्तियां हमको ही पता चलती है कि जिस दिन हमने मौन रखा और जिस दिन हमने बहुत बात की, क्योंकि बाबा ने लास्ट संडे में कहा था ना वाणी की एनर्जी है, वो एनर्जी है, वो वाक शक्ति है, वो वेस्ट हो रही है। लक्ष्य रखना है मौन का, अगर फिर जरूरत पड़ी तो बात करो, वो अलग बात है, पर लक्ष्य बहुत ऊंचा। अगर खाली लक्ष्य रखो कि कम बोलूंगा तो वो नहीं होता है, लक्ष्य ऊंचा रखे, फर्स्ट नंबर आने का लक्ष्य रखो तो फर्स्ट डिवीजन में आएंगे। जिसने खाली लक्ष्य रखा है स्टूडेंट ने कि मुझे खाली पासिंग मार्क लेने हैं 35, 36 आजकल तो 50, वो तो फेल ही होना है निश्चित। तो लक्ष्य इतना ऊंचा रखना है हर चीज में, नॉट फेलियर बट लो एम इज क्राइम, इंग्लिश में कहावत है, नॉट फेलियर बट लो एम, फेलियर नहीं बट लो एम, छोटा लक्ष्य रखना ये एक अपराध है। नापास हो जाना, असफल विफल हो जाना वो अपराध नहीं है, पर छोटा लक्ष्य रखना अपराध। इसके लिए लक्ष्य बहुत ऊंचा। तो ब्राह्मणों का समय वेस्ट होता है बातों में, तो लक्ष्य रखे मौन का, संपूर्ण मौन का, छोटा मोटा नहीं, संपूर्ण। फिर उसके बाद में अगर कोई बोले, कोई फोन आए तो रिसीव करना और बात करना वो अलग बात है, उसमें भी लक्ष्य रखना है कि बहुत लंबा समय नहीं, टू द पॉइंट, ज्यादा से ज्यादा 3 मिनट 5 मिनट, अगर कुछ है एकता व्यक्तिगत तो वो अलग बात है, पर जो वाक्य जितना जिसका जितना विस्तार है वहां पर सार हो जाता है। लास्ट संडे के कहा था ना, कहते हैं वृक्ष में बीज खो जाता है, विस्तार में सार खो जाता है। इसके लिए तुम्हारे बोल शॉर्ट स्वीट व्यर्थ से मुक्त साधारण नहीं हो, ऐसे हो जैसे कि मुबारक और दुआएं प्राप्त हो, स्नेह हो और संयम हो। तो एक जो सोर्स है जिसमें हमारी सबसे ज्यादा एनर्जी जाती है या टाइम वेस्ट होता है वो है
बोल।
बोल बहुत ज्यादा बोलने की इच्छा, बहुत ज्यादा विस्तार से बताने की इच्छा, इस सब में टाइम वेस्ट होता है। और अध्यात्म पथ का जो साधक है उसकी जो एनर्जी है वो बहुत, उसको अपनी एनर्जी को बचा के रखना है अपने मन को शक्तिशाली बनाने के लिए। अगर हमारी सारे दिन भर में एनर्जी वेस्ट होती रही तो हम शक्तिशाली नहीं बन सकते। हाँ, उनकी जो बुद्धि होती है ना, जिनको सुनाई नहीं देता, जिनको दिखाई नहीं देता, उनके सेंसेस ज्यादा डेवलप हो जाते हैं थोड़े बाकी लोगों से। हमारे पास ओपीडी में अंध विद्यालय हॉस्पिटल के बाजू में, वहां के बहुत सारे बच्चे आते हैं, उनको कुछ होता है तो उनकी बुद्धि बहुत तीक्ष्ण है, उनको दिखता नहीं है पर वो बहुत सारी बातें उनको समझ में आती है।
कंप्यूटर चलाते
हैं, मतलब सब कुछ करते हैं वो, बहुत सारे काम भी करते हैं, उद्योग टाइप का भी है वहां पर,
छोटे-मोटे काम।
हाँ, परंतु उनकी बुद्धि बहुत तीक्ष्ण होती है। शब्द वेदी बांध जो सिखाया जाता है वो कैसे सीखा चंद्रगुप्त पृथ्वीराज चौहान ने, आंखें बंद करके। उसकी विधि क्या है सीखने की, आंखें बंद करके और आवाज ध्वनि कहाँ से आ रही है उसके ऊपर केंद्रित करो ध्यान। तो हमको हमारे सारे ही जो कर्मेंद्रिय सेंसेस उनको ट्रेन करना है, उनमें से जो एनर्जी लीकेज हो रहा है उसको रोकना है और सबको एकाग्र करना है। क्योंकि हमको आत्मा के जगत में जाना है, आत्मा का जगत मौन का जगत है, अध्यात्म का जगत अदृश्य का जगत है, अध्यात्म का जगत रहस्य का जगत है। आत्मा में असंख्य रहस्य समाये हुए हैं। जो व्यक्ति बाह्यमुखी केवल सेवाओं में लगे हुए वो अतीन्द्रिय सुख को नहीं पा सकते। ये तो साधना का पथ है, साधना का मार्ग है। गंभीरता, एकांत, मौन, ये सारे जो गुण है ये योगी के गुण है। एकांत, संपूर्ण मौन, संपूर्ण एकांत, सॉलिट्यूड। एक जो बहुत बोलने वाला व्यक्ति है उसको अगर एकांत दे दिया जाए तो हलचल में आ जाता है, उसको कोई चाहिए बोलने के लिए, कोई ना कोई चाहिए। हमने देखा कोई पेशेंट एडमिट होते हैं तो उनको कंटिन्यूस कोई ना कोई बोलने को चाहिए, अगर कोई नहीं आता है नहीं रहता है, तो बेचैन होते हैं। क्यों ऐसा? आत्मा का तो आनंद एकांत में ही प्राप्त होता है, आत्मा एकांत में ही स्व के निकट रहती है। तो एकांत भी और मौन भी। तो जैसे सब जगह बताते हैं 8 बजे तक मौन, स्थूल मौन, मुख का मौन। केवल अगर बोलना है तो ज्ञान की बात है। मुख का मौन अर्थात केवल चुप रहना नहीं, मौन अर्थात बाबा ने अव्यक्त महावाक्य मौन अर्थात ज्ञान का मनन करना, अंदर ही अंदर चिंतन चलता रहे, मनन होता रहे। केवल मुख से मौन कोई है वो भी दमन है फिर। जैसे पीस ऑफ माइंड में लोग आते हैं विदेश के, वो ज्ञानी नहीं रहते, ऐसे ही उनको कह दिया जाता है 2 दिन साइलेंस तो हालत खराब हो जाती है लोगों की, क्योंकि दमन हो गया वहां पर, सेपरेशन। जो भी चीज को सेपरेट करोगे विक्षिप्तता उत्पन्न होगी। दो चीजें होती है, एक तो आडंबर ढोंग दम्भ, या दूसरी तरफ होगा पागलपन। जहां पर भी कोई भी दबाया जाएगा वहां पर विक्षिप्तता उत्पन्न होगी। अभी उनको पता ही नहीं मौन का क्या महत्व है, साइलेंस का क्या महत्व है, और सबको बता दिया कि आज पूरा मौन रहना है, तो कितना वो दबा दिया ना,
एक दिन में
हालत खराब हो जाती है लोगों की, एक ही दिन में। क्योंकि जहां जहां दमन होगा, सेपरेशन होगा, वहां विक्षिप्तता उत्पन्न होगी, या उसका कुछ आडंबर होगा। ये दो वे ठुकते, इसके लिए हमारा दमन नहीं है, हमारा संयम है, और संयम भी प्रेममय और ज्ञानमय संयम। अगर कोई ज्ञान में नहीं है और वो यहाँ आ गया और उसको बोल दिया कि सुबह अमृत वेला उठना है तुमको 8-4 बजे, उसको पता ही नहीं क्या करना है। तो कोई भी चीज को पवित्रता, किसी को बोल दिया तुमको ब्रह्मचारी रहना है, बहुत कठिन है, असंभव ऐसा है ब्रह्मचारी रहना। इस संसार के कलियों के वातावरण में जहाँ काम विकार हवाओं में है, वहां पर ब्रह्मचारी रहना असंभव है। यहाँ की सब जगह वही दिख रहा है, काम ही काम, परंतु संयम हमने कैसे कर लिया? ज्ञान से अपने मन को समझाया, ज्ञानमयी और प्रेममयी संयम, तो ही चित्त शांत हो गया। उसको अगर कुछ भी जबरदस्ती आप थोप दोगे वो रिजेक्ट कर देता है। उसको बोलो आपको एक बार खाना खाना है दिन में, अगर ऐसा बोल दिया तो और ज्यादा इच्छा उत्पन्न होगी खाना खाने की। अगर बोलोगे तुमको फास्ट करना है तो सारे दिन भर सुबह से लेकर रात तक यही चिंतन चलेगा कि क्या क्या खाऊं। रोज तो रोज दो बार भोजन करके फ्री हो गए, पर जिस दिन बोल दिया फास्ट करना है आज, उस दिन और ही चिंतन चलता है क्या क्या खाऊं, क्या क्या खा सकते हैं, ये खाऊं तो चलेगा, वो खाऊं तो चलेगा, अच्छा कल क्या क्या खाऊं, चिंतन करती बहुत ज्यादा चलने लगता है। क्योंकि वो ज्ञान स्वरूप नहीं, हमने फास्टिंग का क्या अर्थ है, उसका उपयोग क्या है, स्वास्थ्य के लिए उसका क्या क्या लाभ है, ये जब तक नहीं समझा है। आध्यात्मिक उन्नति के लिए उपवास का क्या लाभ है, वो हमने नहीं समझा, हमने केवल अपने ऊपर थोप दिया। किसी ने कहा उपवास करना चाहिए, पर क्यों करना चाहिए, क्या करना चाहिए, उसी तरह किसी ने कहा ब्रह्मचारी रहना चाहिए, परंतु जब तक हमने ज्ञान से उसको नहीं समझा क्यों रहना चाहिए, बाबा के महावाक्यों का अध्ययन नहीं किया, तब तक वो दमन होगा केवल। तो किसी भी रूप से कोई भी बात दमन नहीं करनी है। फर्स्ट थिंग इज सब अपने अंदर जो है उसकी स्वीकृति, सर्वांगीण स्वीकृति, जो भी है उसकी पहले स्वीकार करो कि बाबा ने तो कहा ब्रह्मचारी रहो पर मैं नहीं रह सकता, इसकी पहले स्वीकृति चाहिए। बाबा ने कहा निमित्त भाव रखो, हमारे अंदर अहंकार इतना है कि हमने उसको दबा दिया और ऊपर से थोप दिया कि मैं निमित्त हूं, बाबा सब कुछ करा रहा है, मैं निमित्त हूं हर चीज करने में, अंदर में ये इच्छा है कि मेरा नाम हो जाए, पर ऊपर से हम कह रहे हैं मैं निमित्त हूं, जो भी कुछ कर रहे हम कर रहे हैं और हमारा नाम हो जाए, पर ऊपर से थोप दिया तो मैंपन का सप्रेशन दमन किया, वहां पर भी विक्षिप्तता उत्पन्न होगी या दम्भ उत्पन्न होगा। दो ही मार्ग है, एक तो पागलपन या तो ये। संसार में जितने पागलखाने हैं और उसमें जितने पागल है उसमें से 90% से अधिक दमन की वजह से पागल बने। तो फर्स्ट थिंग इज हमारा समय कहाँ कहाँ वेस्ट हो रहा है, उसमें है बोल, बातचीत, और अपने आप को समझाना है मौन का क्या महत्व है, या उसका अनुभव खुद करके देखना है, खुद एक दिन एक्सपेरिमेंट करके देखो कि सारे दिन भर हम चुप रहे, शाम का जो योग किया सारे दिन भर चुप रहने के बाद वो कैसा था, और रोज सारे दिन भर बोलते रहे और वो शाम का योग कैसा था, अंतर स्वतः ही समझ में आए। तो एक शक्ति हमारी जो नष्ट हो रही है, टाइम वेस्ट हो रहा है, वो है बातचीत, बोल और श्रेष्ठ पुरुषार्थियों का, साधारण पुरुषार्थियों का नहीं, जिनको संपूर्ण ध्यान है तो चाहते हैं कि मैं हर कदम आगे बढ़ूं, उनका टाइम कहाँ वेस्ट हो रहा है। बाबा ने आज कहा टाइम सफल करो, आज के मूल्य में टाइम की बात है, अटेंशन की बात है, फॉलो फादर की बात है। बाबा ने कहा याद और सेवा में बिजी कर दो स्वयं को, तो क्या हो जाएगा, माया नमस्कार करेगी, माया आएगी नहीं, माया डिस्टर्ब नहीं करेगी। बाबा ने कहा किसमें अपने आप को बिजी कर दो, विश्व सेवा में, संकल्प और समय विश्व सेवा में लगा दो, तो व्यर्थ का खेल खत्म हो जाएगा। ये बाबा ने कहा जो आकर्षण में वस्तुओं का जो आकर्षण है उसमें टाइम लगाते हो, वहां से निकालकर अविनाशी प्राप्ति क्या है, भाग्य क्या मिला है, उसकी लिस्ट बनाओ और उसमें उसका चिंतन करो। टाइम और कहां वेस्ट होता है, एक तो बातचीत, बातचीत में भी एक है ऐसी बातचीत, एक है फोन पर बातचीत, तीसरी बातचीत है SMS, उधर से एक भेज रहे हैं हम यहाँ से भेज रहे हैं, उधर से वो भेज रहे हैं हम यहाँ से भेज रहे हैं, वो इधर से भेज रहे हैं हम वहां से भेज रहे हैं, व्हाट्सएप चैटिंग, उसमें भी टाइम तो चला गया, 10 मिनट चला गया, आधा घंटा चला गया, 1 घंटा चला गया, पता ही नहीं। हमने इधर से एक बोला, उधर से उधर से कुछ बोला, हमने इधर से कुछ बोला, उधर से कुछ बोला,
दस ही मेल आ जाएंगे।
हाँ मेल और क्या और क्या, तो ये सब भी क्या है, सब टाइमलेस चीज है क्रिकेट, क्योंकि उसमें ज्ञान योग नहीं है। वो उसमें भी हमारी एनर्जी खर्च हो रही है, हमारी एनर्जी बहुत मूल्यवान है। जो आध्यात्मिक एनर्जी है, एनर्जी है, इसे कहीं खरीदा नहीं जा सकता है, किसी से उधार नहीं लिया जा सकता। हमारे अंतर ही वो शक्ति है, उसको ही हमको, उसको रक्षा करनी है उसकी। और कहाँ से टाइम जो होता है, तो बातचीत हो गया, चाहे वो
संग्रह वस्तुओं का संग्रह या साधनों का,
बहुत सारे साधनों का संग्रह करके रखना हमको, ये भी चाहिए। अनावश्यक जानकारी इकट्ठा करना, हमको जो जानकारी का कोई लेना देना ही नहीं है, वो जानकारी इकट्ठा करना, उसमें परचिंतन भी आ जाएगा, वस्तु भी आ जाएगा, व्यक्ति भी आ जाएगा। हाँ वही, उसमें व्यक्ति भी आ जाएगा, वस्तु भी आ जाएगा, इसके साथ क्या हुआ, उसके साथ क्या हुआ, उसके साथ क्या हुआ, इसके साथ क्या हुआ, वो पहले यहाँ था अभी वहाँ क्यों चला गया, पहले वो डिपार्टमेंट में था अभी यहाँ कैसे हुआ, कुछ तो हुआ उधर, क्या हुआ। जब तक डिटेल नहीं पता चलता तब तक शांति नहीं मिलती अंदर, क्या हुआ आखिर। और वो मिलने के बाद फिर उनको पता है, बाबा ने कहा है जो बातें जितनी दिलचस्प, समाचार जितना दिलचस्प उतना ही उसमें व्यर्थ है। अव्यक्त महावाक्य है, जो समाचार जितना दिलचस्प व्यर्थ। न्यूज़पेपर उसी में आ जाएगा, बहुत सारी अनावश्यक बातें होती है उसमें जो हमारे काम की नहीं होती। न्यूज़पेपर पढ़ने का एक उद्देश्य ये हो कि रावण की क्या क्या प्लानिंग चल रही है दुनिया में, बस उतना जानने के लिए। संसार में विनाश की क्या क्या प्लानिंग चल रही है और कलयुग का कैसे क्या हाल है, इतना थोड़ा बहुत वो खाली हेडलाइंस ठीक है, पूरा अंदर डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। न्यूज़पेपर और बुक्स, नॉवेल्स, मैगजीन्स, हमारी नहीं बाहर की, सिनेमा, टीवी। एक भाई थे वो बोलते थे मैं टीवी भी देखता हूँ और बाबा को याद करते करते खाता भी हूँ। तो महान योगी कर सकते हैं सब, कि टीवी भी देख रहे हैं, भोजन भी कर रहे हैं और बाबा की याद में भी है। मल्टीटास्किंग की दुनिया है तो ये संभव नहीं है। दो चीजें संसार और भगवान नहीं हो सकते है। तो टीवी भी एक ब्राह्मण आत्मा होगा सबसे बड़ा, सभी सेंटरों पर टीवी है, उसमें बहुत सारी चीजें होती है, सीरियल्स भी होते हैं, तो न्यूज़पेपर भी होता है, तो एडवर्टाइजमेंट भी होती है, वो सब में टाइम वेस्ट। पर जो देख रहा है वो हम बहुत सारे तर्क वितर्क देगा, जस्टिफाई करेगा खुद को कि नहीं ये जरूरी है जानना, क्योंकि उसमें बीच बीच में हमारा भी दिखा रहे हैं। पर मन की ये टेंडेंसी है कि वो बुरा बहुत जल्दी खींच लेता है, अच्छी चीज दिखाए, बहुत अच्छा सीरियल है, बहुत सारी अच्छी बातें उसमें, 10 अच्छी बातें थी वो याद नहीं रहेगी, पर जो 2 बुरी बातें दिखाई, जो विकार की बातें दिखाई, वो ही अंदर जाके छप जाएगी। ये मन का स्वभाव तो उसको समझना। तो टीवी हो गया, मैगजीन हो गया, फिर इंटरनेट, इंटरनेट का क्या किया जाए, बंद नहीं किया, वो तो जरूरी है, बहुत वो तो आ जाए, मतलब उसमें जनता भी आदमी, उसमें भोजन भी पकता है, कौन कैसे उपयोग कर रहा है। पर एक लक्ष्य रखे कि, हाँ एक लक्ष्य रखे कि रात में उसका उपयोग ना करे, क्योंकि माया का आक्रमण रात में होता है। तो एक लक्ष्य रखे 6 बजे के बाद या 8 बजे के बाद, अनलेस एंड अंटिल बहुत ज्यादा जरूरी है तो ही उसको खोलना, नहीं तो इतना कोई अर्जेंसी है नहीं संसार में कि किसी ने कुछ भेजा और हमको तुरंत जवाब देना, ऐसा अगर हो तो ठीक है। तो ये लक्ष्य रखना है 7 बजे 8 बजे के बाद उसको हाथ नहीं लगाना। सेवा अर्थ वही कह रहा हूँ, एक्सेप्शन आवश्यक जो है उसमें करना है, पर ऐसे ही खोल के देखना, ऐसे ही बैठ जाना, ऐसे ही कुछ टाइप करना, ऐसे ही कुछ डाल देना और देखना उसके बाद क्या आता है, क्योंकि सारा लिंक होता है, ये देखेगा तो वो देखेगा, उससे एक एक टिकट कनेक्टेड कनेक्टेड, बुद्धि यहाँ से चालू हुई, ज्ञान से चालू हुई और कहाँ पहुंच गई समझ में नहीं आता, चालू कहाँ से किया था,
लंका में पहुंच जाती है।
वो कहाँ चले गए वो पता ही नहीं चलता। और टाइप करते करते कुछ अच्छा उसमें दिख गया तो हमको 10 बजे सोना था, और वो सोते करते करते 10:30 बज गए, और फिर 10:30 बजे बाबा को फिर गुड नाइट किया और फिर सो गए। और दूसरे दिन उठ देखे तो अमृत वेला उठे, परंतु स्थिति साधारण। ऐसा नहीं कि अमृत वेला मिस कर गया था, क्योंकि उसका पुरुषार्थ है, पुण्य है, आदत है, उठेगी जरूर, सब कुछ करेगी, बाहर वालों को कुछ समझ में नहीं आएगा, परंतु उसकी अपनी स्थिति एनर्जी कम हो जाएगी। एनर्जी को वेस्ट नहीं करना है, एनर्जी हमारी कहीं ना कहीं वेस्ट हो रही है, उसको रोकना है बस। कहाँ कहाँ वेस्ट हो रही है वो खुद देखो,
संकल्पों
में। ये बहुत ही सूक्ष्म है। तो टीवी हो गया, इंटरनेट हो गया, मोबाइल हो गया। मोबाइल में गेम्स खेलते ब्राह्मण कम खेलते हैं, नहीं खेलते
व्हाट्सएप सही नहीं है
बाबा ने तो ब्राह्मण दूसरे गेम्स खेलते हैं। आज बाबा ने कहा है विचित्र खेल खेलते हैं, बचपन के खेल खेलते हैं, रमणीय खेल खेलते हैं, हंसने वाला खेल खेलते हैं, व्यर्थ के खेल खेलते हैं, ये सारे खेल ब्राह्मण खेलते हैं। आज बाबा ने कहा तो गेम्स, टीवी, मोबाइल, इंटरनेट, मैगजीन, हाँ फिर है खान पान। खान पान में क्या खुद बनाना, अच्छा अच्छा जो है वो तो है, पर उसमें फिर टाइम जाता है। अगर अवेलेबल है तो ले लो और बस शांत हो। नहीं उसमें थोड़ा प्रोसेस करती है उसका तड़का विड़का लगाती है और अच्छा। हाँ वो तो इसमें तो ये ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसमें कोई किसी से तर्क वितर्क द्वंद नहीं कर सकते, हार जाएंगे हम।
जो व्यक्ति जिस चीज को कर रहा है उसमें जस्टिफिकेशन जरूर है।
हर व्यक्ति जो कुछ करता है वो ये सिद्ध करने का पूरा व्यवस्था करता है कि वो जो कर रहा है वो सत्य है। हम ये क्यों बना रहे हैं उसके पूरे उसके पास तर्क है। तो आप किसी को बोल नहीं सकते कि भाई इतना अच्छा तो बना है फिर भी क्यों बना रहे हो, वो उसके पास है समस्या, हेल्थ की है, बहुत सारा अपना 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 हर एक का है। पर एक लक्ष्य रखना है कि योगी अर्थात जितेंद्रिय, योगी अर्थात जिसने इंद्रियों को वश में कर रखा है। अभी हमारी सबसे बड़ी धारणा है योगी अर्थात पवित्रता। पवित्रता अर्थात उसका सीधा सीधा संबंध है काम विकार से, जनेंद्रियों का संयम, कंट्रोल ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अगर हम ये सोचे कि हम एक ही इंद्रियों को बाबा ने इसको तो हमने कंट्रोल कर रखा है पर बाकी को खुला छोड़ रखा है, ऐसा हो नहीं सकता। कर्मेंद्रियों को कंट्रोल अर्थात पांचों ही कर्मेंद्रियों कंट्रोल नहीं चाहिए, एक नहीं, पांच कर्मेंद्रिय और पांच ज्ञानेंद्रिय कहा जाता है। पांच कर्मेंद्रिय कौन कौन सी?
चक्षु कर्ण नासिका जीवात्मा,
वो कर्मेंद्रिय नहीं है, वो ज्ञानेंद्रिय है, 10 है टोटल। हाथ, पैर, मुख,
कान,
वो नहीं, वो तो ज्ञानेंद्रिय में आता है। ऑर्गन ऑफ रिप्रोडक्शन, ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीशन, लिंग और गुदा, ये पांच जो है ये इसको कहा जाता है कर्मेंद्रिय। तो इसमें पांच चीजें, हाथ है, पैर है, मुख है, ये तीन तो हमारे वश में है, दो को छोड़ दो। परंतु हम यदि ये छोड़े, पवित्रता का सीधा संबंध इस कनेक्शन विद द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जनेंद्रिय जिसको कहते हैं उसका संयम अर्थात पवित्रता। अगर हम ये सोचे कि हम इसको इसको तो संयमित कर रखा है परंतु इनको छोड़ रखा है तो वो नहीं होगा। और पांच है ज्ञानेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय में नाक, मुख नहीं,
जिह्वा,
मुख अर्थात कर्मेंद्रिय बोलना, जिह्वा अर्थात टेस्ट स्वाद सुनना, स्पर्श सेंसेस जिसको कहेंगे, जिससे परसीव करते हैं, अंदर लेते हैं रूप रस गंध स्पर्श शब्द। ये अगर हम खाली हम एक को वश में करेंगे दूसरों को नहीं करेंगे ये संभव नहीं है। करना है तो सभी को वश में करना पड़ेगा। अगर हम ये कहेंगे कि मुख को जिह्वा को वश में नहीं करना है तो कैसे होगा? इसके लिए योगी अर्थात जिसका भोजन से अनासक्त हो, विदाउट दिस क्राइटेरिया ब्रह्मचर्य का पालन नहीं हो सकता। अगर कोई कहे कि मैं तो ये तो ब्राह्मण जीवन है, इसमें खाओ पियो और मौज करो, ऐसा है, तो वहां पवित्रता का बाबा ने आज की मुरली में जो कहा ना, पाप और अवज्ञा है, ये दो चीजें थोड़ी थोड़ी सूक्ष्म रूप में होती रही। विदाउट कंट्रोल ऑफ पैलेट प्रैक्टिस ऑफ ब्रह्मचर्य इज इम्पॉसिबल। ऐसा कहावत है कि जब तक आप अपनी जिह्वा को वश में नहीं करते तब तक ब्रह्मचर्य नहीं हो सकता, और जिह्वा को अगर वश में कर लिया जाए, केवल एक जिह्वा को, टंग, टेस्ट, तो 90% बाकी सारी कर्मेंद्रियां ठंडी पड़ जाती है। केवल एक को, एक ही को वश में करना है, केवल जीभ को, टेस्ट को। इसके लिए ऋषि मुनि क्या खाते थे?
कंदमूल
फल। देवता है क्या खाते हैं? मसाले खाते, नमक, चार चीजें हैं, नमक, तेल, चीनी और नमक और क्या, मसाला। ये चार चीजें ऐसी है कि जो आत्मा को खींचता है। सबसे ज्यादा मोह, आकर्षण, आसक्ति, आत्मा इनमें है। इमेजिन करो ये चारों चीजें नहीं रही, मजा आएगा, बहुत ही दुखी हो जाएंगे सबके सब। चलो उतना भी नहीं, सुबह जो नाश्ता था वही, दोपहर में भी भोजन में वही मिल गया तो क्या हालत हो जाएगी।
आसक्ति से नहीं खाना होता, 36 प्रकार मिले,
एक ही हो। परंतु एक एक्सपेरिमेंट करके देखो, फिर कल कुछ भी सूखा खा के देखो। हाँ, वो अगर है तो बहुत अच्छी बात है, वो होना चाहिए, पर हमको उसका अभ्यास कम है, उसका अभ्यास हमको कम है। वो जो भी मिले ठीक है, पर ये अच्छा ही है, सभी अच्छा ही है, यहाँ कम है ही नहीं, संपन्न है सब कुछ। इसके लिए उसका अनुभव कम है, इसका अनुभव ज्यादा है, ये 90% अनुभव है। आप जो बोल रहे दोनों अवस्था सेम रहे वो बहुत अच्छी बात है, परंतु उसका अनुभव ही नहीं है। भूख का अनुभव है क्या? भूख, बहुत भूख लग रही पर है ही नहीं खाने को कुछ, है ही नहीं, इसका अनुभव ही नहीं, नहीं हो सकता। फिर वहां पर तड़पेंगे, वहां पर भूख इतनी लगेगी, इतनी भूख लगेगी कि बात मत पूछो, फिर बहुत सारा चाहिए।
इधर कुर्सियां है ना बाबा कब्र में, लेकर
ऊपर भी होंगी ना, ऊपर
भी
इधर पीछे लगा।
इसके लिए भोजन अनासक्ति से खाना, ये एक बहुत बड़ी तपस्या, इंटीग्रल पार्ट है ये ब्रह्मचर्य का। ब्रह्मचर्य का कनेक्शन पवित्रता से, ये सीधा तीनों का एकदम घनतम कनेक्शन। जब तक ये नहीं होगा तब तक वो नहीं। हम ये नहीं कह सकते कि हमको तो बहुत अच्छा लगता है, ये भी खाए, वो भी खाए, ये भी खाए, वो भी खाए, योगी नहीं बन सकते।
ये कंदमूल खाते थे, मतलब कंदमूल क्या क्या आता है?
सारे फल फूल सब्जियां, सारी सब्जियां
कच्ची खाते,
कच्ची खाते थे, मतलब जो भी पकाते होंगे, पर उसमें क्या नमक रहता था? नहीं, नमक को भी कामोत्तेजक कहा हुआ है। जिनको बहुत चटपटा खाने की आदत है, जिनको बहुत गरिष्ठ भोजन खाने की आदत है, जिनको बहुत मसाले वाला खाने की आदत है, बहुत तीखा खाने की आदत है, वो सब राजसिक भोजन है। तीन प्रकार के भोजन है, राजसिक, तामसिक और सात्विक। तामसिक में बासी जो भी है वो सब आएगा, राजसिक में ये सारा जो आएगा, और सात्विक जिसमें नैसर्गिक आहार है वो सब आएगा। परंतु वो सब संभव नहीं है, अभी दूसरा प्रश्न ये है। परंतु हम अपने लिए ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि अगर कभी हमको बिना नमक के भी मिल जाए तो भी हमारी स्थिति
वैसी है,
कभी अगर ऐसा हो कि उसमें एकदम ही फीका है तो भी हमारी स्थिति सही। अभी ये तो होगा नहीं, तो स्वतः करना पड़ेगा फिर बीच बीच में, एक रीति से वैसा ही है। यहाँ तो अगर देखा जाए तो पूरा कलयुग में शुरुआत से लेकर अंत तक चालू करो, फिर उसका जो भूमि है जहाँ ये तत्व ही तमो प्रधान है, तत्व ही तमो प्रधान है, तो भोजन तो कलयुग का तमो प्रधान ही है। फिर वो अलग बात है कि ये ब्रह्मा भोजन है, ब्रह्मा भोजन की अपनी महिमा है, ये दुख भंजन है बाबा ने कहा, याद में बनो, बनाओ और याद में खाओ तो तुम्हारे आधे पाप नष्ट हो जाएंगे, तुमको 50% प्योरिटी अचीव हो जाएगी, यहाँ तक बाबा ने कहा हुआ है। बाबा ने कहा है तुम जो भोजन बनाते हो बहुत स्वादिष्ट बनाते हो, पर ये मत समझो कि तुम याद में बनाते हो क्योंकि तुमको आदत हो गई है, ये भी कहा है बाबा ने शांतिवन में। ये मत समझना कि तुम इसलिए क्योंकि वो याद में बनाते हो, क्योंकि आदत हो गई बनाने की, इसके लिए भोजन जो भी प्राप्त है उसको बाबा की याद में अनासक्त भाव से स्वीकार करना, उसमें आसक्ति रहित भाव से स्वीकार करना। याद में हाँ वो भी है, समान में खाओ, याद में खाओ, धन्यवाद देकर खाओ, कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर खाओ ताकि कल्प वृक्ष की हर पत्ते को वो भोजन चला जाए, जो भूखे है संसार में उनको भी वो भोजन चला जाए। इस समान से खाओ, अलग अलग समान, बाबा ने कई समान दिए भोजन कर, परंतु लक्ष्य है कि उसमें हमारी आसक्ति न हो, और अगर वो आज है तो कल नहीं होगा तो भी हमारी स्थिति सेम है। बाबा ने कहा है सच्चे योगी जो होंगे, साकार महावाक्य, दो तीन दिन भोजन नहीं मिले तो भी मजे से रहेंगे, आएगा कभी ये साकार में, बाबा का ही कहा हुआ। तो एक टाइम हमारा यहाँ भी जाता है, जो भी मिल जाए उसमें संतुष्ट, संतुष्ट है सततम योगी। योगी की परिभाषा अर्थात संतुष्ट। आज बाबा ने टीचर बहनों को भी कहा, टीचर अर्थात सदा दूसरों को सेवा, दूसरों को संतुष्ट करने में उपस्थित। तो ये सारे लीकेजेस हमको बंद करना है, जो भी हमारे अपने जो लीकेजेस है जिस वजह से हम श्रेष्ठ अनुभव नहीं कर पा रहे, जिस वजह से हमारी श्रेष्ठ स्थिति नहीं बन पा रही है, वो सारे लीकेजेस जब तक बंद नहीं करेंगे तब तक 10 साल भी वही पुरुषार्थ चालू रहेगा, जहां हम थे वहीं हम रहेंगे। बाबा ने कहा इस वर्ष पुराने वर्ष की कोई भी बात यहां नहीं आनी चाहिए, सही ना? आज तो ये सारा टाइम के ऊपर था। चलो आज की मुरली क्या देख रहे हैं बाबा? वर्तमान को देख रहे हैं और भविष्य को देख रहे हैं, और उसके मन में डबल फीलिंग उत्पन्न हो रही है, दो देख के एक तरफ तो उसको बहुत खुशी हो रही है और दूसरी तरफ उसको रहम भी आ रहा है। किस बात का रहम आ रहा है? विचित्र चलन चल रहे है, रमनी खेल खेल रहे है, बचपन का खेल खेल रहे है, व्यर्थ का खेल खेल रहे, नटखट खेल खेल रहे है, इसके लिए उसको रहम आ रहा है। किस बात के लिए रहम आ रहा है? कि मैंने इनको इतना श्रेष्ठ स्थिति में रखा और ये नीचे आ जाते, क्यों? गफलत के कारण, अलबेलेपन के कारण। तो हमारी स्थिति नीचे हो जाए ये बाबा को पसंद नहीं है। बाबा को क्या पसंद है? श्रेष्ठ स्थिति, सबसे बड़ा गिफ्ट। बाबा ने कभी स्थूल गिफ्ट मांगा है क्या आज तक? क्या कभी दिया है स्थूल? घड़ी दे दी किसको? बहुत अच्छा पुरुष होते हैं, लो घड़ी यहाँ से निकाल के कुछ। बाबा को स्थूल कुछ देखता ही नहीं है, उसको स्थूल कुछ भी नहीं चाहिए, उसको जो कुछ चाहिए सब सूक्ष्म चाहिए। हमारी स्थिति ही सबसे बड़ी गिफ्ट है उसके लिए। तो बाबा ने कहा श्रेष्ठ स्थिति से नीचे आ जाते, क्यों? अलबेलेपन के कारण और गफलत का कारण। और क्या देखा? एक तो ये देखा, फिर ताज। बाबा ने क्या दिया? ताज दिया, तख्त दिया और तिलक दिया। तिलक कौन सा दिया? स्वराज्य का तिलक, विजय का तिलक, सफलता का तिलक, स्मृति का तिलक, मास्टर सर्वशक्तिमान भव का तिलक, संपूर्ण पवित्र भव का तिलक, योगी भव पवित्र भव का तिलक दिया। ताज दिया, जिम्मेवारी का ताज, विश्व कल्याण का ताज और विश्व सेवा, विश्व कल्याण और सेवा की जिम्मेवारी का ताज, विश्व सेवा का ताज, विश्व कल्याण का ताज। तो ताज दिया और तिलक दिया और कुंडल क्या दिया? तुम्ही से सुनो, कुर्सी बच्चे सुनाते। और बिंदी क्या दी? 16 श्रृंगार दिए है ना बाबा ने, एक तो कुंडल दिया है, बिंदी क्या दी? 3 बिंदी, स्मृति की बिंदी, और ये क्या नथनी क्या दी? 1 बाप दूसरा ना कोई, और वो गले में हार कौन सा दिया? सफलता की विजयी वैजयंती माला है,
विजय का गले,
और वो क्या बाहुबंद, बाजूबंद कौन सा दिया? सेवा में सहयोगी, सहयोगी होने। हाँ इधर है, इधर है, यहाँ है ना
कंगन आता है यहाँ।
और घुंघरू कौन से दिए? माता जी घुंगरू घुंगरू खुशी खुशी में रास करने के घुंगरू करधनी 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 कौन सी थी दृढ़ता दृढ़ता की करधनी यहाँ है ना कमर कस के कमर कस इस पुण्य कार्य में कदम से कदम बढ़ाकर तो करधनी दृढ़ता की करधनी दी लाली लाली रूहानियत की मुस्कान और मीठे बोल और चमक चमक दिव्य गुणों के साक्षात्कार कराने की बाप के गुणों की साक्षात्कार कराने की लाली तो लाली
चमक
लाली चमक नथनी कुंडल कुंडल
काजल
काज काजल भी है काजल किसका रूहानी पवित्र दृष्टि का काजल तो ये सब श्रृंगार बाबा ने लिए 16 श्रृंगार से सजे धजे आत्माए दुल्हन सजी होती है ना 16 श्रृंगार से तो बाबा तो आया है ना बरात लेके ले जाने के लिए पूरा चाहिए दोस्तों फुल श्रृंगार तो ही जाएगी आत्मा नहीं तो नहीं तो बाबा ने ताज दिया और तख्त दिया और तिलक दिया पर बच्चे इस ताज के बगैर बजाय क्या करते हैं
टोकरी
और गठरी गठरी किसकी
पाप
और अवज्ञाओं की गठरी छोटे छोटे पाप छोटे पाप बड़े पाप अवज्ञा है छोटी अवज्ञा है बड़ी अवज्ञा है इसकी क्या गठरी और टोकरी किसकी बोझ की गृहस्थीपन का बोझ तो पाप और अवज्ञाए अवज्ञाए अर्थात आज्ञा भंग आज्ञा लंघन आज्ञा का उल्लंघन श्रीमत का उल्लंघन दरकिनार कर दिया बाबा ने जो कुछ कहा उसका
आज्ञा का लंघन कर दिया
ब्राह्मण जीवन में पाप कौन कौन से है जिसको बाबा ने पाप की संज्ञा दी है पाप बहुत बड़ा शब्द है पाप दैहिक दृष्टि देह से बाबा ने यहाँ तक कहा है दैहिक दृष्टि बाबा ने कहा है अगर किसी को दृष्टि से और संकल्प से
टच किया
तो संकल्प से और दृष्टि से हाथ से नहीं
संकल्प
इसको क्या कहा बाबा ने
महापाप
महा महा महापाप 72 की मुरली क्या कहा महा महा महापाप तो देह की दृष्टि सबसे बड़ा अपवित्रता को बाबा ने सबसे बड़ा पाप कहा फिर छोटे मोटे पाप बहुत सारे जैसे कि फैमिलियरिटी वो तो हमने 8 प्रकार जो गिनाए वो सब आ जाएंगे उसमें और क्रोध सारे विकार उधार लेना भी बाबा ने उस दिन बोला ना उनको हुक्म नहीं है उधार लेने का किसी से भी उधार लेने का हुक्म नहीं चोरी करना चोरी करके खाना झूठ बोलना छिपा के रखना या खाना
बिना पूछे उठा लेना
बिना पूछे किसी का मोबाइल देख लेना उसमें देखना क्या क्या मैसेजेस है देखना उसके व्हाट्सएप में क्या क्या आया हुआ है कौन कौन है आया हुआ है किस किस से वो बात कर रहा है दूसरे की पर्स में देखना क्या क्या है दूसरों की बातें सुनना क्या क्या बात कर रहे हैं ये सब सूक्ष्म पाप है अति सूक्ष्म पर ये भी हमारे पकड़ में आते दूसरे की कोई चीज रखी है तो वैसी रखी है हम उसको हाथ में लगाए वो अलग बात है बाबा ने कहा तुमको उधार नहीं लेना है क्यों कारण बताओ 5 या 6 एक तो हिसाब किताब बन जाता है अगर किसी से उधार लिया तो दूसरा
उसकी याद बनी रहे
संबंध बिगड़ते वेरी गुड ये सबसे इम्पोर्टेंट है संबंध बिगड़ते अगर हमने किसी से पैसे लिए हमने कहा हम 10 तारीख को दे देंगे और वो दिए नहीं तो उसके संकल्प चलते रहेंगे जैसे एक भाई ने उदाहरण सुनाया था अपना बताया था अनुभव कि किसी एक दूसरे भाई ने उससे पैसे लिए 5,000 एक ही सेंटर के और वो 5,000 लेके भूल गया अभी रोज अमृत वेले उसके सामने आके बैठता है वो शाम को अमृत वेले में शाम को तो जैसे वो योग करने जाते हैं वो सामने आता है तो उसको वही दिखता है 5000 5000 5000 बाबा दिखता ही नहीं है और वो भूल गया, उसको याद ही नहीं कि मैंने लिए,
लेने वाला भूल गया,
अभी परेशान हो रहा है ये। एक तो दे दो फिर उसको भूल जाओ कि ये मैंने दिए, वो एक बात है सर। अगर किसी को बहुत ही जरूरत है वो दे दिया और बस फिर पता ही नहीं, मेरा कोई लेना देना नहीं, बाबा को यज्ञ में चले गए बस ऐसा समझ के दे दो फिर, अगर देना ही है तो। नहीं तो फिर संबंध बिगड़ते हैं, दो दोस्तों के संबंध यहाँ तक बिगड़ते हैं कि एक के घर में झगड़ा होता है, इतना झगड़ा होता है पति पत्नी का डाइवोर्स तक चला जाता है, ये एक कारण। तीसरा कारण, क्यों नहीं उधार लेना है किसी से? नहीं वो नहीं, अभी अभी प्रैक्टिकल
देना पड़ेगा,
वापिस देने की चिंता परेशानी कि हमको वापिस देना है, चिंता लगी रहती है उसकी, और ज्यादा काम करना पड़ता है, एक्स्ट्रा मेहनत करनी, यहाँ की बात नहीं मधुबन के बाहर की बात, कोई अगर काम कर रहा है उसको ओवर टाइम करना पड़ेगा, ओवर टाइम करना पड़ेगा तो ज्ञान योग ऑटोमेटिक कम होगा, परेशानी होगी, तो ये सारा उसमें आ जाएगा। ऐसी एक कहावत है कि उधार लेते समय तो जो खुशी शादी में होती है वो होती है, और जब उधार देते समय जो मातम में जो दुख होता है वो दुख होता है, शोक। ऐसी एक कहावत है इसी भाषा में, मतलब लेते समय तो हमको अच्छा लगता है पर देते समय इच्छा नहीं होती कि जल्दी दे दूं, ऐसा नहीं होता है कभी कभी किस किस को। हम ये सोचते हैं ये तो बहुत अमीर है, इसके पास तो होंगे ना, इसको देने की क्या जरूरत है, हाँ वही वही ऐसी चीज हम टेक फॉर टेकन फॉर ग्रांटेड कि तो ले लिया बस ठीक है।
कहीं कहीं तो
इसके लिए बाबा ने क्या कहा, हुक्म शब्द यूज किया, ऑर्डर है तुमको ऑर्डर, ऐसा बाबा हमेशा नहीं कहते, बाबा क्या कहते हैं हमेशा, ठीक है भाई ये तुमसे होता है तो करो, याद के लिए बाबा ने कहा है जितना हो सके बाप को याद करो, और पवित्रता ये बाप ने ऑर्डिनेंस निकाला है, करना है इसके लिए, दिस इज नो अगर मगर कुछ नहीं इसके लिए, ये कुछ कुछ बातें है दीदार करना ही है, दीदार मस्ट ऑर्डर ऑर्डिनेंस, वैसे बाबा ने ये उधार लेना भी उसमें डाला है, हुकुम में डाला है। पर कभी कभी ऐसा संसार में ऐसे ब्राह्मण मुझे जो बाहर रहते हैं उनका ऐसी परिस्थिति आती है कि लेना पड़ता है, ये बहुत ही खराब परिस्थिति आ गई,
सावधानी बरतनी,
हाँ तो सावधानी बरतनी है, लेके जितना जल्दी हो सके वापस दे देना है, चुप तो कर देना। अच्छा दूसरी एक बात है, हमने किसी से पैसे लिए और हम गए मृत्यु, तो वो तो आना पड़ेगा ना उसके पैसे देने वापस,
हिसाब किताब
बन गया, हिसाब किताब में आएगा ये सब, मैंने हमने ले तो लिए और हमारी मृत्यु हो गई।
नहीं अभी तो भारत ले रहा,
वो दिया बाबा ने दिया हुआ है,
बाबा भी बोलता है ना ले लिया वो वापस दे रहे हो,
जैसे मतलब
तो वो भी हो सकता है,
वो भी हो सकता है।
अभी जैसे एक बच्चा पैदा हुआ किसी घर में, पैदा होते ही पता चला उसके दिल में छेद है, डॉक्टर ने बोला इसको ऑपरेशन करना है, ऑपरेशन को 5 लाख, ठीक है ऑपरेशन किया 5 लाख खर्चे हुए, ऑपरेशन हो गया 2 दिन के बाद में
बच्चा
ओम शांति गया। अभी वो क्यों आया था,
उसको लेने के लिए
आया था ना, तुमने दिए थे ना उसको, वो लेने तो आएगा, तो वो ऐसे है फिर ये इस तरह का हिसाब बनेगा,
इन्होंने भी रुलाया होगा तो
दुख देके लेके गया,
दुख देके लेके गया ना, मतलब मिला तो कुछ नहीं वैसे, तो बाबा ने इसके लिए ये भी एक अवज्ञा,
पैसा काट लेता है ना इंटरेस्ट देना पड़ता है,
हाँ वो एक व्यवहारिक वातावरण हो जाता है उसमें, मतलब जो दो ब्राह्मण आत्माओं का एक रूहानियत होती है दोनों में, और जब उसमें व्यवहार आ जाता है ना तो फिर वो फिर एक दूसरे के ऊपर आरोप भी करते हैं, बीच में ऐसे भी हुआ था कि वो फिर उसके ऊपर कोर्ट केस भी करता है कि हमको पैसे वापस दो, फिर वो कोर्ट केस जब चला जाता है और वो बातें आ जाती है तो उसमें कहाँ रूहानियत और कहाँ लौकिक,
ब्राह्मणों में आपस में लेन देन नहीं करनी
चाहिए, आपस में लेन देन करनी ही नहीं है बाबा ने,
उधार वाले में 95% बात बिगड़ती है,
बिगड़ती है, इसके लिए बाबा ने हुक्म में डाला है ये ऑर्डर, बाबा ने ऐसा तो नहीं बोला ठीक है भाई देखो तुमसे जितना हो सके नहीं लो, ऐसा नहीं बोला है, ऐसा नहीं बोला है बाबा ने,
कोई
मार्जिन
नहीं है,
हाँ ये भी रूल है, तो ये
भी तो आता है बाबा आपस में,
इसके लिए आपस में भी पैसे
लेन
देन, अगर चाहिए तो हाँ देना भी नहीं, बाबा ने देना भी नहीं, बाबा ने देना भी है उसमें भी हिसाब किताब बनता, तो बाबा ने कहा टोकरी कौन सी, अवज्ञाओं की और पाप,
पापों की।
हम इसमें वापस आएंगे, आगे बढ़ते हैं। तो पाप और छोटी छोटी अवज्ञा, अवज्ञा वो भी अवज्ञा, वहाँ से सुबह से लेकर रात तक अवज्ञा है। कर्मयोगी बनकर नहीं किए, कर्म कॉन्शियस हो गए, वो भी अवज्ञा है। किसी से अवज्ञाओं की तो बहुत बड़ी लिस्ट हो सकती है, इतनी छोटी छोटी अवज्ञा। बाबा ने तो याद रखा कि बाप किसी और किसी को भी याद करो तो वो भी विकर्म है, यहाँ तक पाप का है उसको भी। आत्मिक दृष्टि नहीं देखी, आत्मिक दृष्टि से नहीं देखा, किसी का देह देखा, किसी का देह हमको अंदर ही संकल्प है इसका बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, तो यहाँ देख के लगा ये कितना गंदा है,
घृणा।
ये दोनों एक ही रूप है दोनों के, ये तो कितना, इसको कौन रखेगा, मतलब ये भी एक प्रकार से वो अवज्ञा ही है। मतलब हम रूप में आकर्षित हो रहे हैं, कुरूप है कोई या रूपवान है कोई, दोनों तरफ, एक तरफ घृणा एक तरफ अति प्रेम, अति आसक्त ये हो रहा है। किसी को बार बार देखना क्योंकि रूपवान है, देखने की इच्छा हो रही है, और किसी के प्रति घृणा है, देखने की इच्छा नहीं है, ये दोनों एक ही बाजू है। तो हमारा जब लक्ष्य ही है सबको आत्मा देखना, तो इसमें शरीर का तो कुछ है नहीं, फिर काला है कि गोरा है कि छोटा है, बौना है कि लंबा है, उससे हमको क्या, सब आत्मा है। तो ये सब अवज्ञा है। फिर बाबा ने बोझ के लिए कहा है, बोझ, बोझ का टोकरी। ये जब बाबा देखते हैं तो बाबा को रहम आता है, बाबा को हंसी आती है, बाबा को अच्छा नहीं लगता है। और भी बाबा ने तीसरी बात देखी है, दो हो गई, और बाबा ने सहज साधन दिए हुए, परंतु सहज की जगह मुश्किल कर देते हैं। बाबा ने हर चीज सहज बना के दिए, साधन भी सहज दिए और साधना भी सहज, और बच्चे उसको मुश्किल कर देते। हट के क्या कहा बाबा ने, एक वर्ड है उसने, नहीं हट के प्रमाण, हट के प्रमाण, मुश्किल को हट के प्रमाण, हट प्रमाण यूज करते हैं, उसको कठिन बना देते हैं। ये तीसरा। चौथा, ज्ञान सूर्य के सम्मुख होते हो तो माया के बादल आ जाते, तो कौन सा खेल खेलते हैं, सम्मुख और किनारे, सम्मुख और किनारे। अभी भी बाबा के पास है, कोई विकार आ गया तो बाबा की याद गई, तो ज्ञान सूर्य से हट जाते हैं। सूर्यवंशी आत्माओं की निशानी, 12 निशानियों में से पहली निशानी, वो सदा ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहेंगे। बादल आएंगे और जाएंगे, परंतु उनका, बादलों का उनके ऊपर असर नहीं होगा, उनका प्रकाश एक समान रहेगा, उनकी सदा चढ़ती कला रहेगी। तो ये सूर्यवंशी आत्माओं की निशानी, और जो किनारे और सन्मुख वो चंद्रवंशी आत्माओं की। फिर बाबा ने कहा, बाबा बैठा थे याद की गोदी में, और वो वहां से उठ के माया की गोदी में, मिट्टी में, स्मृति बेहबान की स्मृति मिट्टी में चले जाते हैं। ज्ञान रत्नों से खेलने के बजाय मिट्टी से खेलने लग जाते हैं। मिट्टी से खेलना अर्थात देह का चिंतन करना, देह का, किसी देहधारी के बारे में सोचना, उसके रूप के बारे में सोचना, रंग के बारे में सोचना, स्वभाव के बारे में बहुत ज्यादा सोचते रहना और उसमें आकर्षित होना, ये सब देहवान की मिट्टी है। बाबा ने कहा इसमें नहीं, तुमको तो ज्ञान रत्नों से खेलना है। फिर बाबा ने कब कब क्या क्या कहा वो तुम्हारी बुद्धि में हो और आज क्या कहा, कल क्या कहा था, परसों क्या कहा था, बस यही तुम्हारी बुद्धि में हो, इसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं, खाली
नहीं तो आपस में
चर्चा भी वही करो, वो तो कर्तव्य है। बाबा ने कहा ज्ञान की चर्चा करना, अगर विकार में गए तो बाबा ने कहा ज्ञान रखु चक्कर, रखु चक्कर हो जाएगा। अगर गिरे तो बाबा ने कहा बुद्धि से ज्ञान रत्न खलास हो जाएंगे। तो हमारी बुद्धि में निरंतर ज्ञान रत्न हो तो चेक करते रहो। और क्या कहा आगे, तो बाबा ने फिर पूछा ना, फिर वो आकर्षणमय वस्तु की तरफ आकर्षित हो जाते हैं, प्राप्ति समय को भूलकर आकर्षणमय वस्तु की तरफ आकर्षण, उसमें समय देने लगते। तो ये सारे खेल कर रहे बाबा ने कहा, व्यर्थ का खेल, नटखट खेल, बचपन का खेल। अभी वहां बचपन के खेल को समाप्त करो, अभी कहा क्या बनो, वानप्रस्थ बनो, और इन सारे खेल को समाप्त करो, ताज तख्त और तिलक धारी बनो। और फिर इसके लिए क्या करने को कहा बाबा ने, निरंतर किसकी या सामने रहे, स्मृति में क्या इमर जो, प्राप्ति
और
भाग्य को सदा सामने रखो, मुझे क्या क्या मिला है, क्या क्या मेरा भाग्य है, निरंतर निरंतर ये चिंतन चले कि मेरा भाग्य क्या है, लंबे समय हम कोई एक स्थान पर रहते तो उस स्थान का महत्व कम हो जाता है मन से,
दूसरे स्थान पर
नहीं दूसरे स्थान पर नहीं, वहीं रहकर उस स्थान के बारे में बाबा ने क्या क्या कहा हुआ है उसके बारे में चिंतन करना कि ये मधुबन है जहाँ आने के लिए सेंटरों पर इतनी मर्यादाएं बनी है, हम वहां रहते जहाँ लोग आने के लिए तड़पते, एक रात रुकने के लिए तड़पते, विदेशी आने के लिए तड़पते, लोग नीचे आते तो एक रात ऊपर आते, एक रात रुक के फिर जाएंगे, एक रात अमृत वेला करने के लिए तड़पते, इधर हम ऐसी जगह पे रहते हैं, तो ये सर्वश्रेष्ठ स्थान है संसार का। बाबा ने अभी परसों कहा था लाइन लगेगी नीचे से,
चार गुना किराया देके लोग आते टैक्सी
लेकर।
ये
तो ये हमको पता है, ऐसा नहीं कि किसी को पता नहीं इसका क्या महत्व है, पर वो मर्ज उसको इमर्ज करना है, निरंतर अपने आप को याद कर दिलाना है कि मैं कहाँ हूँ, सर्वोच्च स्थान है संसार का।
आधा ज्ञान सरोवर ही आता है,
ज्ञान सरोवर भी आते हैं यहाँ,
आधा ज्ञान सरोवर नहीं पूर्व हमेशा आते, कई कई को हमेशा आते हैं।
और इसका क्योंकि यहाँ जो वाइब्रेशन है, यहाँ बनाया वायुमंडल है, यहाँ जाते ही ऑटोमेटिक हमको हमारे संकल्प भी ढीले ढाले होंगे, तो वहां जाते ही संकल्प स्थिर होते, इतना स्थान का महत्व। तो इसके लिए भाग्य की लिस्ट, बाबा ने कहा प्राप्तियों की लिस्ट, प्राप्ति कराने वाला या भाग्य देने वाला कौन है उसको भी याद करते रहो। और इसके लिए बाबा ने क्या कहा फिर कि सदैव याद रखो कि हर कर्म में हर संबंध में बाप साथ है,
बाप साथ है,
हर कर्म में हर संबंध से बाप साथ है। जब ये साथ छोड़ते हो तब ये खेल करते हो, वो पुराने संस्कार जब आते हैं तो ये सारे खेल करते हो, विचित्र खेल, रम्मी खेल, हंसी के खेल, नटखट खेल, ये सारे खेल करते। बाबा ने कहा आगे तो ये सब खेल को अब समाप्त करो, एक ही खेल करो, बाप और बच्चों का मिलन,
मेला खेल,
मेला करो और दूसरों को बाप समान बनाओ, बस ये एक ही खेल करो, या ज्ञान रत्नों से खेलने का खेल करो, बाकी सारे खेल समाप्त। विश्व की जिम्मेवारी उठाने वाला बाप,
आपके छोटे छोटे
नहीं उठाएगा,
छोटे 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 जिम्मेवार,
छोटे छोटा बोझ नहीं उठाएगा, सारी दुनिया का बोझ उठाएगा तुम्हारा। फिर बाबा ने इसमें कहा ना, तुमने बाप से वायदा किया है कि एक बाप दूसरा ना कोई, तो मैपन कहाँ से है, तीन प्रकार के मैपन माँ बाबा ने बताया, देह का मैपन, मेरापन कहाँ से आया, पूछा बाबा ने देह का मेरापन कहाँ से आया, फिर ये जिम्मेवारी का मेरापन कहाँ से आया, फिर ये पुराने संस्कार कमजोरी का मेरापन कहाँ से आया, तीन मेरेपन बताए यहाँ। अगर मेरा समाप्त हो गया कि मेरा बाबा दूसरा ना कोई, तो ये मेरेपन कहाँ से आया, जिम्मेवारी मेरी, मतलब मैं ड्यूटी करूंगा तो ही होगा ये, अगर मैं नहीं हूं तो ये ड्यूटी, ये काम, ये सेवा हो नहीं सकती, इसमें भी अहंकार। सेवा बहुत लगन से कर रहे, सब कुछ कर रहे, परंतु ये बात है कि मैं अगर नहीं हूं तो ये होगा ही नहीं, अगर किसी ने कुछ कहा था तो चलो हम जा रहे, करना है करो, जो करना है कर लो, देखता हूँ कैसी होती है सेवा मेरे बगैर,
उससे अच्छा करने वाला
मतलब अहंकार, ये मैं ही कर सकता हूँ, इसमें निमित्त भाव तो समाप्त हो रहा है, निमित्त भाव आ रहा है क्या इसमें, हाँ दमन हो गया था अभी बाहर निकला, अंदर से तो यही था कि मैं ही कर रहा हूँ, था खाली ठोक दिया था कि बाबा करा रहे हैं, और जैसे किसी ने विरोध किया तो वो बाबा करा रहे हट गया और अपना असली स्वरूप सामने आ गया, फिर क्रोध भी आ गया, करना है तो करो, देखता हूँ कैसे करते हो, तो वही दमन, जहाँ दमन होगा, मैपन का दमन होगा तो निकलेगा एक दिन, इस तरह से काम का दमन होगा तो वो भी विक्षिप्त रूप से निकलेगा एक दिन, जिस जिस विकार का दमन किया जाएगा, दबाया जाएगा, वो निकलेगा, उसको समझना होगा, दमन नहीं संयम, प्रेम पूर्वक, ज्ञान पूर्वक उसको समझा कर रूपांतरण करना होगा, उसका ट्रांसफॉर्मेशन, तो ही वो शांत होगा, नहीं तो नहीं, तो ये बाहर निकलेगा। इसके लिए बाबा ने क्या कहा, जिम्मेवारियों का मेरापन, हम हैं हम नहीं है तो भी ये यज्ञ चलता रहेगा, ये याद है, आज हम डिपार्टमेंट में खुर्सी पर बैठे, कल हमारी जगह कोई और होगा, आज हम मधुबन में, यहाँ नहीं कहीं कहीं और होंगे, तो ये चालू रहेगा, हमारी वजह से कुछ रुकने वाला नहीं, हमारा तो हम अपना भाग्य बना रहे। बाबा ने कहा ना समय, ये कौन सा है, आगे बोला ना ये अमानत का समय तुमको मिला है एक्स्ट्रा,
रूम
रूम रूम
बस, ज्यादा अहंकार लाने की जरूरत नहीं है कि हम इतनी बड़ी सेवाएं कर रहे
हैं,
अरे तुम कुछ कर ही नहीं रहे हो,
ताकि बुलाना ना दे,
हाँ
घात घात क्या
घात हिंदी शब्द है वो घात तो पता नहीं मुझे
हिंदी होगा
हिंदी होगा ये हिंदी से हिंदी में नहीं है अच्छा अच्छा हो सकता है वो मतलब उसका अर्थ इतना ही है कि एक्स्ट्रा टाइम ये जो कुछ मिला है ना हम अपने लिए मिला है मतलब बाबा का कुछ नहीं है इसमें मतलब आज हमको तो बाबा ने रखा है इसके लिए खुश रहना है कि हम ये सेवा कर रहे हैं पर उसको हमारा कुछ हम नहीं रहेंगे तो भी होती रहेगी वो किसी और को रख देगा वहां तो उसमें निमित्त बहुत समाप्त हो जाते हैं अगर ये अहंकार आ जाएगा ये सेवा केवल मैं ही कर सकता हूँ ये सेवा मैं 50-20 साल से कर रहा हूँ मेरे जैसा इतना किसी को अनुभव नहीं है ये सेवा करने का मैं ही अच्छी कर सकता हूँ और किसी को रखा तो कोई गड़बड़ कर देगा किसने बोला गड़बड़ करेगा वो और अच्छी कर सकता
और अच्छी कर सकता
ये संकल्प भी गलत है ये तो माया है जो अहंकारी व्यक्ति है अहंकारी व्यक्ति को कभी ये स्वीकार ही नहीं करेगा कि मैं रॉन्ग हूँ उसको पता ही नहीं रहता है कि माया भी काम कर रही है अंदर ये दर्पण है इसके लिए बाबा ने कहा ज्ञान का चिंतन जब तक नहीं करते तब तक पता ही नहीं चलता है
वो उल्टे नशे में
हाँ उल्टा नशा
जैसे एक दारू पीने वाला दारू पी ले और उसको बोलो भाई उधर जाना नहीं उधर शेर आता है कौन
नहीं सुनता है किसी की नहीं सुनता
तो हर वर्ड में मैं हो गए
मैं ये मैं इतना सूक्ष्म है देखो अध्यात्म मार्ग में सबसे अध्यात्म मार्ग में सबसे पहला खतरनाक शत्रु है काम विकार अभी काम विकार को जीतना ही सबसे मुश्किल है पर जिसने इस काम विकार को जीत लिया अब उसके सामने एक ही शत्रु बच जाता है वो है मैं बाकी ये क्रोध और सब छोड़ दो जिसने काम को जीत लिया पूर्ण रूपेण और अभी पूर्ण रूपेण सेवाओं में लग गया अभी सेवाएं जब बढ़ती जाती तो नाम होता है प्रशंसा होती है कीर्ति होती है क्योंकि निस्वार्थ भाव से कर रहे और ब्रह्मचर्य की शक्ति है उसकी वजह से तो और सेवाओं में विस्तार होगा सेवाओं में प्रगति होगी सफलता प्राप्त होगी वहां फिर आगमन होता है अहंकार फिर वो जो दमन वहां पर भी हो जाता है कि ऊपर से कह रहा है बाबा करा रहा है और अंदर से कह रहा है मैं कर रहा हूं ऊपर से ब्रह्मा कुमारी और अंदर से मैं मेरा नाम हो जाए
दादी को देखा दादी कभी मैं शब्द
आज मैं सुबह भी कहा ना दादी एकमात्र ऐसी एक संस्था में है पूरे कि जिसको स्वयं बाप दादा ने सर्टिफिकेट दिया है प्रकाश मणि दादी एकमात्र ऐसे कि जिसको बाप दादा ने स्वयं सर्टिफिकेट दिया है अव्यक्त महावाक्य ये मैपन से मुक्त है ये मैपन से मुक्त है निर्माण भाव में रहने वाली निर्मल चित्त है ये बाबा के महावाक्य है निर्माण भाव में रहने वाली निर्मल चित्त है ये मैपन से मुक्त है इन्वर्टेड कॉमा बाप दादा के महावाक्य ऐसा सर्टिफिकेट और किसको नहीं मिला है केवल दादी को मिला दादी बोलती है तो कैसे बोलती है दादी को संकल्प आया थर्ड पर्सन में बात करती है दादी ऐसे कहती है कि दादी ने यहाँ ये भी नहीं बोलेगी कि दादी ने सेवाएं की नहीं बाबा की कमाल उसके लिए बाबा दादी का शब्द क्या है सेवाओं का दादी के सारे सुनो जितने आज तक के सेवाओं के समाचार है उसमें दादी क्या कहेगी दादी ने ये सेवाएं की वो थर्ड पर्सन की भी ऊपर वहां क्या कहेंगे बाबा की कमाल है ये जो है ना दिस इज एक्सट्रीमली हाई लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी एक्सट्रीमली हाई स्पिरिचुअल कैलिबर स्पिरिचुअल पर्सनैलिटीज जो होती है ना तो अगर जिन रखी जाए लिस्ट सारों को तो ये जो लेवल जो रीच होती है ना ये सबसे टॉप मोस्ट लेवल है कि जिसमें शक्तियां नहीं दिख रही है शक्तियां गुणों में परिवर्तन हो गए हैं शक्तियां दिख नहीं रही है वो गुणों में ट्रांसफॉर्म हो गए वो गुण ही दिखाई दे रहे हैं ऐसा लग रहा है ये तो कुछ पुरुषार्थ ही नहीं कर रही है
नहीं सर तो ऐसे लगता
लग रहा है ऐसा है कि ये पुरुषार्थ छिप गया है पुरुषार्थ की पराकाष्ठा है वो उसमें पुरुषार्थ दिखता नहीं है उसमें शक्तियां नहीं दिखती है कि दादी में सहन शक्ति बहुत है ये नहीं दिखता है क्या दिखता है शक्तियां गुणों में ट्रांसफॉर्म हो गई जैसे देवताओं को हम बोलते हैं कि देवता बहुत शक्तिशाली है ऐसा नहीं कहा जाता है देवता गुणवान सर्वगुण संपन्न हम ऐसा कहते हैं कि देवता मास्टर सर्वशक्तिवान है ऐसा कोई गायन नहीं है देवताओं का गायन है सर्वगुण संपन्न तो वो अवस्था स्पिरिचुअलिटी की हाईएस्ट स्टेज है कि जिसमें मैपन ही समाप्त हो जाए तो बाबा ने आज भी कहा ना जिम्मेवारी जैसे ब्रह्मा को सबसे ज्यादा जिम्मेवारी थी फिर भी डबल लाइट स्थिति आपकी तो कुछ भी नहीं है उसके अंतर में बाबा ने कहा तुम्हारे तो कुछ भी नहीं इसीलिए बाप को कॉपी करो फॉलो ब्रह्मा ये कहा दादी का कोई एक ड्राइवर था, अभी नीचे है वो जो प्रकाश भाई है, उनका ही अनुभव है, लिखा हुआ है। उन्होंने कहा कि बहुत पहले 1974 में जब दादी जब ड्राइवर कम थे तो वो थे, फिर बीच में एक बार एक ड्राइवर आया बाहर का रखा, फिर उसने एक बार दारू पी ली और उसने गाड़ी चलाई, तो फिर दूसरे दिन दादी को पता चला और फिर इसको बुलाया कि तो इसने पहुंचते ही बोला दादी को, उसको मैं कल निकालने वाला हूँ, आप चिंता नहीं। मतलब दादी ने बोला मैंने तुमको उसको निकालने के लिए नहीं बुलाया। उसको और एक चांस दो, इसके लिए बुलाया, उसको समझाओ इस तरह से। शशि बहन का अनुभव लिखा है दादी के बारे में। शशि बहन लिखती है कि 74 में जब मैं यहाँ आई मुझे कुछ पता नहीं था, तो दादी को दादी ने कोई सेवा दी तो दादी ने, शशि बहन ने कहा ये मैं नहीं कर सकती। दादी के क्या वाक्य थे शशि बहन के लिए, दादी को और बाप दादा को ये विश्वास है कि आप ये कर सकते हो। ये है बड़ी दिल, विशाल दिल,
ये आगे बढ़ाने की,
ये आगे बढ़ाने पर ऐसा सब नहीं कर सकते, ये बहुत ऊंची बातें हैं। ये हमको तो सबके अवगुणों को समा लेना, ये सबसे हायर स्टेज है। हमको किसी में थोड़ा अवगुण दिखता है, कोई थोड़ी अवज्ञा करता है, कोई थोड़ा अच्छे से काम नहीं करता है, कोई थोड़ा ड्यूटी पे लेट आता है, कोई थोड़ा कुछ करता है, हम तुरंत बोल देते हैं ना उसको। तीन के बाद
देखना ही नहीं,
धीरे से। तो वो वाली, तो बाबा ने क्या कहा और आगे, फिर बाबा ने ज्ञानी तो आत्मा के लक्षण के बारे में बताया। ज्ञानी तो आत्मा अर्थात सोचना, बोलना और करना, समर्थ स्थिति, ये ज्ञानी तो आत्मा के बारे में कहा। फिर उसके बाद में वही समय के लिए कहा ना कि अपना नहीं समय जो है वो ये रूम के बारे में कहा कि अमानत में ये समय मिला है, इसके लिए इस समय को क्या करो, बाप की श्रेष्ठ मत पर इसको सफल करो, और फिर अपने समय और संकल्प को विश्व सेवा में इतना लगा, बिजी कर दो स्वयं को कि व्यर्थ खत्म हो जाए। यही बाप दादा देखना चाहते हैं। फिर पार्टी नंबर वन, उसमें
आकर्षण
सितारा, चमकता हुआ सितारा, अगर चमकते हुए सितारों को देखेंगे तो बाप दादा को भी उसमें देखेंगे, तो चमकते हुए सितारा उसमें परसेंटेज कभी कम हो जाती है, कभी ज्यादा हो जाती है, वो क्यों होता है, अटेंशन। जैसे घृत का उदाहरण दिया, घृत अगर रहे तो वो दिया एक रस रहेगा, तो उसका कारण अटेंशन की कमी। तो इसके लिए बाबा ने अव्यक्त मुरली में भी क्या कहा, अटेंशन प्लीज, अटेंशन अविनाशी हो, अटेंशन स्वतः हो, अभी नीचे चली हुई, अटेंशन स्वतः हो, अटेंशन अविनाशी हो, अटेंशन प्लीज।
इसने कहा अटेंशन होगा तो टेंशन नहीं होगा,
हाँ, हो ये दोनों चीज एक साथ नहीं हो सकती, टेंशन और अटेंशन, जैसे रात और दिन एक साथ नहीं हो सकती, जैसे रवि और रजनी एक साथ नहीं हो सकती, उसी तरह ये भी एक साथ नहीं हो सकता है। वो दोहा है तुलसीदास, रजनी रात न हो एक साथ, हमेशा रजनी सारा। तो अटेंशन और बाबा ने उसमें कहा, एक तो संपूर्ण अटेंशन, एक सामान्य अटेंशन, साधारण अटेंशन, सामान्य अटेंशन अगर है तो हम तो है ही, संपूर्ण अटेंशन अर्थात बाप के गुण और बाप की शक्तियाँ। हम टीचर से मुलाकात भूल गए ना, बीच में टीचर था, टीचर को क्या कहा बाबा ने, संतुष्ट, टीचर अर्थात संतुष्ट, टीचर अर्थात सर्व को संतुष्ट करने के लिए उपस्थित। संतुष्ट कौन कर सकेगी, जिनको जो बाप के गुण मेरे गुण, जो बाप के ऑक्यूपेशन है संतुष्ट, तो जो बाप के गुण वो मेरे गुण, जो बाप के कर्तव्य वो मेरे कर्तव्य। तो बाबा ने कहा संतुष्टता की खान, खान गांव, सबको संतुष्ट करना बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम है। फिर अटेंशन की कमी, तो बाबा ने इसके लिए क्या विधि बताई, अमृत वेले अपनी दिनचर्या सेट करो, सेट नहीं करते तो सफलता नहीं होगी, गलती होती रहेगी। मन की दिनचर्या सेट करनी है, स्थूल भी और मन की भी, मन की दिनचर्या से एक एक कर्म के साथ क्या क्या याद रखे कि जिससे बाबा की याद है। यहाँ से वहां तक जाना है, फिर वहां से डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट से वहां तक जाना है, फिर वहां से वहां तक जाना है, फिर ये काम करना है, फिर वो काम करना है, फिर बुद्धि का काम करना है, फिर स्थूल काम करना है। ये स्थूल काम के साथ में एक 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 सामान या याद किस तरह से जोड़े उसका स्वयं स्वयं को चिंतन करना है। ट्रैफिक कंट्रोल में क्या अभ्यास करना है, अगर हम ट्रैफिक कंट्रोल के समय बिजी रहते तो अपना ट्रैफिक कंट्रोल खुद सेट करो, जरूरी नहीं है कि वो 10:30 बजे और 12 बजे ही उनको करना है, अपना दिनचर्या के अनुसार अपना ट्रैफिक कंट्रोल खुद भी सेट कर सकते हैं। तो एक एक कर्म में याद या सामान कैसे जोड़ा जाए उसके ऊपर चिंतन। तो बाबा ने कहा अमृत वेला करो ये, और अटेंशन संपूर्ण अटेंशन अर्थात बाप के कर्तव्य और गुण। फिर बाबा ने वहां पे वो तीव्र पुरुषार्थ के बारे में भी कहा ना, इसी को कहेंगे तीव्र पुरुषार्थ। पार्टी नंबर टू, याद और सेवा में बिजी रहो। माया तो याद ही तुम्हारा स्वधर्म है और सेवा ही तुम्हारा कर्तव्य है, इसी में बिजी रहो। तो माया नमस्कार करेगी, माया डिस्टर्ब नहीं करेगी, माया आएगी नहीं,
माया डिस्टर्ब
हो जाएगी। माया तो कोई व्यक्ति है नहीं, प्रतीकात्मक सिंबॉलिक है। माया को चाय पानी नहीं पिलाओ, चाय पानी पिलाओगे तो वहां और बैठ जाएगी और उसको आदत पड़ेगी, बार बार आएगी आपके घर में,
महिमा
में
आदत पड़ जाती है।
फिर उसके बाद में नेक्स्ट स्थिति उड़ती कला के बारे में, उड़ती कला, हर कर्म में उड़ती कला, उड़ती कला होगी तो उसमें आगे बढ़ेंगे, कदम आगे बढ़ेंगे, कदम आगे बढ़ेंगे तो मंजिल स्पष्ट नजर आएगी। जितनी जितनी जो वस्तु के तुम समीप जाते उतनी उतनी वो वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। इसके लिए फॉलो फादर दूसरा आगे देखने, इसके लिए डबल लाइट के बारे में मन वहाँ जोड़ दिया उसको, डबल लाइट के बारे में, डबल लाइट, हाई जंप करो, समय कम है, उड़ने का समय है, दौड़ने का समय है,
हाई जंप देने का समय
अभी उसको जो ये नहीं है, फोड़ने का नहीं है, फिर फॉलो फादर, बाप को बहुत ज्यादा जिम्मेदारी थी, श्रेष्ठ कर्म का जिम्मेदारी उसको कितनी थी, उसके अंतर में तो तुम्हारी
कुछ
भी नहीं है, इसके लिए जो उसने किया वो कॉपी कर, जैसा उसने किया निमित्त भाव। ये एक बहुत ज्यादा चिंतन का विषय है कि हम कर्मों में निमित्त भाव कैसे लाएं, कर्मों में हमारा अहंकार कैसे कैसे नष्ट हो, क्योंकि हर एक व्यक्ति को पहले तो स्वीकृति चाहिए, इसका दमन नहीं करना है कि हमारे में तो है ही नहीं निमित्त भाव का, पहले तो सर्वांगीण स्वीकृति की है, महसूस था, उसके बाद ही उसको खत्म किया जा सकता है। अगर केवल दमन करके रखा कि नहीं नहीं मेरे पास तो है ही नहीं, मैं तो निमित्त है, बाबा ही करा रहा है सब कुछ, ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है, हर एक व्यक्ति में अहंकार होता है, हर जो सेवा हम करते हैं, जो कर्म हम करते हैं, जो कुशलता हमको प्राप्त हुई है करते करते, जो सफलता है हमारे अपने अनुभव है सफलता के, उसके आधार पर हमको अहंकार है, वो उसका हमको भी ज्ञान नहीं है।
समय पर निकलता है
जब हमको किसी ने बोल दिया ये क्या है, ये तुमने किया, ऐसा करते है क्या कभी, तब उसको निकलता है, अरे तुमको क्या पता हम कितने साल से इधर, तब निकलता है।
अभी नया नहीं सिखाएगा,
हम हर बार हम रंगोली निकालते और हम ही निकालते, और एक बार निकाली रंगोली 18 जनवरी की और किसी ने आके कहा कि ये क्या रंगोली है, ऐसी रहती है क्या, तो हम सुना नहीं है, अरे हर बार हम ही निकालते हैं। ये मतलब ये इसका भी हमको भी पता नहीं था इसका, वो तब पता चला जब हमारे मुख से अचानक निकल गया वो, और उसके बाद में हमने सोचा तो अरे बाप ये मुझे नहीं था। हमारा अहंकार सबसे सूक्ष्म है, अध्यात्म मार्ग में अंतिम शत्रु है अहंकार।
फील होता है लेकिन उस समय जब आई क्या बोल निकल जाए
बोल, हाँ उसके बाद याद आता है ना,
फील होता है,
पर आप रोक नहीं पाते ना,
रोक नहीं पाते
तो उसका निकल क्या शुद्ध होता है, ये शुद्ध अहंकार नहीं है अंतिम, ये 99, वो सांप सीढ़ी के खेल में 99 का पॉइंट है, वहाँ 98 में सोचा कि काम क्रोध लोभ सबको मैंने जीत लिया, अच्छा 99 सीधा सांप सांप जीरो जैसे थे।
तो ये जो सूक्ष्म कर्म इंद्रिया मन बुद्धि संस्कार इस पर
हाँ वही मतलब इस पे चिंतन करना पड़ेगा, बहुत सूक्ष्म चिंतन करना पड़ेगा कि अहंकार को जीतना, अहंकार अर्थात रावण, रावण को मारने के लिए और कोई नहीं चाहिए, राम को ही अवतरित होना होता है। बाकी सबको तो सब लक्ष्मण मार देगा, किसी को हनुमान खत्म कर देगा, वो परमात्मा कृपा जब होगी ना तो ही अहंकार नष्ट होता है आत्मा, तब तक नहीं होता। राम को रावण अहंकार का प्रतीक है,
वही डायरेक्ट बाण मारेगा या
तो जो मारेगा तभी वो समाप्त होगा, नहीं तो नहीं।
कुंभी कुंभी
वो भी अंतिम अंतिम शत्रु है अध्यात्म मार्ग का मैपन, जिसमें ये मैपन ही समाप्त हो जाता है कि मैं कुछ हुई ही नहीं। जैसे वो रबिया नाम की एक मुस्लिम सेंट जिसका काफी सूफी संत है, बहुत उसकी कविता है वगैरह, जैसे हमारे इधर मीरा है वैसे उधर रबिया नाम की, वो बीमार पड़ती है तो इतनी बीमार पड़ती है कि उसकी उसकी जो दासी है उसको कहती है तू भगवान को बोलना कि तुमको ठीक कर दे। तो बोलते है अच्छा क्या भगवान को पता नहीं, तो बोलते पता तो होगा, अच्छा तो अगर ये मुझे बीमारी हो रही है तो क्या ये उसकी इच्छा से नहीं हो रही है, हाँ उसकी इच्छा, तो मैं ये प्रार्थना करूँ कि मुझे ठीक कर दे उसकी इच्छा के विरुद्ध। समर्पण भाव है यहाँ, अल्टीमेट इज सरेंडर मीन्स मैपन का त्याग, उसका कुछ है ही नहीं, मना जो वो मैं, मतलब मैं कुछ कर रहा हूँ ये है ही नहीं, उसमें समाप्त हो गया सब कुछ। ये अहंकार सबसे अंतिम शत्रु है, सबसे पहले काम पर वो भी सबसे बड़ा और अंतिम है अहंकार। फिर क्या कहा बाबा ने, फॉलो फादर का हो गया, फिर लास्ट विदाई के समय
परिवर्तन
इस साल नहीं होना चाहिए,
18 जनवरी
बहुत 18 जनवरी आई और उसके बाद तो अभी और डबल हो गई, तब से 70 कब की आई,
79 की है,
तो और कितनी सारी आके आई और गई,
इसलिए
परिवर्तन ट्रांसफॉर्मेशन बदलाव ये चाहिए, नहीं तो कुछ नहीं। फिर आगे बाबा ने क्या कहा कि हर समय समय के लिए कहा ना भाग्य, एक एक सेकंड भाग्यशाली है,
संगम
का एक एक सेकंड भाग्यशाली है, इसके लिए क्या करो, ये भाग्य की खुशी में नाचते रहो, इसको देख हर्षित होते रहो, और ये खुशी अंदर की बाहर दिखाई दे, चेहरे पर दिखाई दे।
श्रेष्ठ
बाप के बच्चे, हाँ यही नहीं, यहाँ पे नहीं है वो, उसमें है वो चमकते हुए सितारे में, कि श्रेष्ठ बाप के बच्चे हो सामान्य और अटेंशन के बारे में, कि श्रेष्ठ बाप के बच्चे तो कौन मानेगा,
कुछ मिला इनको,
हाँ इनको कुछ मिला, इन्होंने कुछ पाया,
विदाई में,
अच्छा विदाई में, हाँ तो कोई भी देखे तो ऐसा लगे कि इन्होंने कुछ पाया है, इनको कुछ मिला है, तो इतना श्रेष्ठ बाप के बच्चे ऐसा दिखाई दे। और भी कोई पॉइंट है, हाँ फिर लास्ट में था कि इतना अटेंशन रखो कि माया तुमसे तुम्हारी खुशी छीन ना सके,
प्राप्ति और प्राप्तिदाता को
याद करो, सामना करने मानो माया का सामना कर सकेंगे। और भी कुछ है, 5 मिनट है हमारे पास, तो ये पूरा, हाँ
जो एक बाबा दस रानों को और उसके आगे अलग कहा बाबा, और कोई नहीं।
तो पूरा मुरली में मेन मतलब सूक्ष्म अवज्ञाएं ना हो, पाप ना हो, और बोझ से मुक्त, कोई बोझ नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई भारीपन नहीं, कोई जंजीरे नहीं, कोई बेड़िया नहीं, कोई सलाखी नहीं, मुक्त गगन, विमुक्त गगन में उड़ना है पंछी की तरह, वो है डबल लाइट फरिश्ता, कोई बोझ नहीं जिसको, परंतु मनुष्य को बोझ अच्छे लगते हैं। बाबा ने ये कहा, ये भी एक कहा ना, छोड़ो तो छूटे, पकड़ छुड़ाओ छुड़ाओ चिल्लाते रहते, खुद ही बनते हैं फिर छुड़ाओ छुड़ाओ, एक तरफ पकड़े एक तरफ छुड़ाओ, एक और तो कोई भी पाप, सूक्ष्म पाप, सूक्ष्म अवज्ञा, कोई बोझ नहीं। बाबा ने इसके लिए विधि क्या बताई, हाथ छोड़ते हो, दो कारण बताए, एक तो हाथ छोड़ते हो इसके लिए ये सब खेल खेलते हो, दूसरा कारण बताया पुराने संस्कार, इसके लिए ये सारे खेल करते हो, इसके लिए सदा बाप का साथ, सदा श्रेष्ठ भाग्य की स्मृति, सदा प्राप्तियों की स्मृति, और सदा स्वयं को बिजी रखना, ज्ञान और याद और सेवा में बिजी रखना, विश्व कल्याण में बिजी रखना, हर संकल्प में बिजी रहना, किसी ना किसी रीति से हमारा दिन भर बिजी रहना चाहिए, चाहे स्थूल सेवा भी हो, चाहे यहाँ से हम ट्रैवलिंग कर रहे हो, नीचे जा रहे हो, उसमें भी वो चिंतन करो जाने से पहले कि यहाँ से नीचे जाने का समय कैसे सफल हो, केवल गाड़ी से इधर उधर देखते देखते नहीं, कुछ तो चिंतन करते करते नीचे पहुंचना। कहीं पर भी हमारा टाइम ज्ञान और योग के अलावा ना हो। श्वासोश्वास याद मुश्किल है, श्वासोश्वास पर ज्ञान का चिंतन तो हो सकता है, श्वासोश्वास याद तो बहुत मुश्किल है, परंतु श्वास चिंतन तो हो सकता है ज्ञान का। हम इतना तो सोच सकते हैं कि भाई बाबा ने आज बोला कि किसी से उधार नहीं लो, चलो क्यों नहीं लो उधार, एक दो तीन चिंतन, मैं चिंतन चिंतन बता रहा हूँ, इस तरह से चिंतन। आज बाबा ने कहा टाइम वेस्ट नहीं करो, तो क्यों हमारा टाइम वेस्ट होता है, कहाँ हमारा टाइम वेस्ट होता है। बाबा ने कहा अटेंशन, अटेंशन फुल, संपूर्ण अटेंशन, बिजी रहो और फॉलो फादर, उधर का पूरा देख लो। तो जैसे उसने किया वैसे हमको करना है। अंधानुकरण एक शब्द है हिंदी में, जैसा ब्लाइंड अंधानुकरण, जैसे उसने किया बस सोचो नहीं ज्यादा, बस फॉलो करो, आंखें बोला नक्शे कदम पर चलते रहो।
एक बार बाबा ने मुरली में कहा था ना अभी दो तीन दिन पहले कि वो कुछ भी आते थे आप उसको करो तो बाबा उसको
हाँ ताकत, क्योंकि
अभूल बना देगा,
अभूल बना देगा। चाहे वो इसके लिए कहा था, इसने कहा या उसने कहा, कई बच्चे मूंझते हैं, कहते हैं कि ये बाप ने कहा या भाई ने कहा, ये ब्रह्मा ने कहा या शिव ने कहा, परंतु बाप अगर किसी ने भी कहा हो, बाप अभूल को भी भूल बना देगा। इतनी ताकत उसमें है, वाक्यता इतनी ताकत उसमें है।
ये करना के लिए बोला, अगर नहीं आपने को डायरेक्शन देते आपको करना है तो करो, आप
बाप जिम्मेवार है। यहाँ तक भी बोला है किसी एक मुरली में 90s की कि निमित्त आत्माओं का आपको डायरेक्शन लगता है ये ठीक नहीं है,
और लगता है ये
और आपको लगता है कि इसकी स्थिति भी ठीक नहीं है जो डायरेक्शन दे रहा है। फिर भावा ने कहा है हाँ नहीं उसके लिए भावा ने कहा है ये परखने की शक्ति पर मुरली है। फिर बाबा ने कहा है क्या बाप की परखने की शक्ति तुमसे ज्यादा है क्या, उसको वहां बिठाया किसने?
खतरा है,
बहुत ही खतरा है उसमें।
हमारे
बस बोल दो खत्म, आपने बोला नहीं खत्म। ऐसी असंख्य बातें हैं जिसके विस्तार में हमको जाएंगे तो खतरा फंस
जाएंगे।
उनका
कहना ये है कि टीचर मैंने आज्ञा दे रहे हैं ना, बात ये है। एक तरफ नियमित है
अभी देखो हर एक सेंटरों पे जो मुरलियाँ चलती है वो मुरली में होता क्या है और उसको मॉडिफाई करके अलग रीति से भी बताते हैं कुछ कुछ,
तो जैसे सामने होता वैसे बताते हैं।
हाँ मतलब वो घुमा फिरा के एक ही बात में थोड़ा आने की कोशिश करते हैं थोड़ा।
क्या कई बार सुनाने वाले भी जो शक्ति होती है ना उसको तो सामने वाले भी वही है, बाकी सामने वाली शक्ति का नहीं
होता। हाँ मतलब ऐसे भी होता है,
हजम नहीं कर पाएंगे
इसके लिए। जो समर्पित बहनों के नियमों में एक नियम ऐसा भी है कि मुरली के द्वारा अपनी शिक्षा नहीं देनी है, ये नियम है एक, और उसमें ये भी लिखा हुआ है अपनी शिक्षा नहीं देनी है क्योंकि स्टूडेंट खुद भी स्वयं मुरली पढ़ते हैं, कारण भी दिया है क्योंकि अब उसमें है नहीं कुछ बात, और या अपनी इच्छा से कुछ कट नहीं करना है उसमें। एक पवित्रता की बहुत ही पावरफुल पॉइंट अगर आ गई और हमको लगता है ये तो नाराज हो जाएंगे सामने बैठे वाले, तो हम उसको कट करके आगे चले जाते हैं, ये भी नहीं करना है, ये भी बाबा ने मना किया
है।
और उसमें खाली इतना है कि तुमको तो सब कुछ देना है, पर इधर उधर से घुमा फिरा के एक ही बात में आते हैं सब, मतलब वहां पर घुमा फिरा के
आजकल तो ज्यादा
एक एक महीने में दो तो तीन तीन चार चार बार स्टूडेंट परेशान, ये क्या है, अभी वो आ रहा है अभी वो प्रोग्राम हो रहा है वो अभी वहां पे वो बनने वाला है, तो उनको समझ में आया था ये क्या हो क्या रहा है। और जो भी बात आएगी मुरली में वो घुमा फिरा के वहां पे मुरली रहेगी बाजू में, मुरली जैसे एक साधन हो गया है।
कम से कम आज ब्राह्मण ऐसे
हाँ,
लेकिन उनका भी दोष नहीं, ऊपर से ही होता है पूरा, इधर से डायरेक्शन जाते हैं
ये सब सूक्ष्म बातें हैं बहुत।
लेकिन जो उनको करना होता है वो करते हैं, नहीं करना होता नहीं
करना ज्यादा जाना नहीं है उसमें कोई भी। यहाँ पे एक ही चीज रखनी है ध्यान में कि मुझे अपने आप को बचाना कैसे, क्योंकि व्यर्थ का तो जैसे कि क्या है सागर है, जंजाल है पूरा, आग है पूरा, जिधर देखो व्यर्थ, जिधर देखो व्यर्थ। विकार तो छोड़ दिए पर अभी व्यर्थ है। बाबा ने इसके लिए कहा मधुबन जब मधुबन यज्ञ जब व्यर्थ से मुक्त हो जाएगा तो जादू की नगरी बन जाएगी। तो यहाँ ही व्यर्थ है, यहाँ से ही व्यर्थ जाता है ना सब्जेक्ट, यहाँ पर भी व्यर्थ है, यही का प्रतिबिंब उधर गूंजता है।
दादी ने ना मधुबन वालों को डायरेक्शन नहीं है मधुबन की, आपको सेंटोरों के चक्करों में जाना
जाना नहीं, वहाँ क्या हो रहा है, किसका क्या हो रहा है, स्टूडेंट्स का क्या हो रहा है, इसमें अगर आप जाओगे तो वो ऐसा जंजाल है कि निकलना मुश्किल है। माया अदृश्य चीज है, धीरे धीरे पता चलता
है, रीढ़ विहीन है,
इससे अच्छी जगह कोई नहीं है। पर जो ज्ञान योग नहीं कर रहा है
उनके लिए,
उनके लिए तो ये पूरा माया है। परंतु जो ज्ञान योग में संलग्न है, जो ज्ञान योग में ही, हाँ बस महामूर्ख सब कुछ यहाँ ही, व्यर्थ जितना यहाँ है फिर उतना, क्योंकि संसार में जो कुछ द्वापर युग से बनेगा वो यहाँ से, तो उसमें राजनीति भी आता है, फिर कूटनीति राजनीति भी इधर से ही उत्पन्न होगा, क्योंकि वहाँ संस्कार यहीं से लेके जाएंगे आत्मा है।
तो वहाँ के वालों के लिए ना, वहाँ वहाँ वालों के लिए
राजनीति राज स्वराज्य की नीति
नीति
परमात्मा नीति। परंतु जो ज्ञान योग में है उसके लिए इससे बढ़िया कोई स्थान नहीं है, तपस्या पुरुषार्थ सब कुछ, पर केवल हमारा ध्यान इस पे ही होना चाहिए, दूसरे पर क्या हो रहा है उसे कोई लेना देना। जैसा जो मेडिकल का स्टूडेंट है उसको इंजीनियर में क्या होता है वो उसे कोई लेना देना नहीं, एग्रीकल्चर में क्या होता है, इकोनॉमिक्स में क्या होता है, उससे मुझे क्या करना है, बस हमारा अपनी किताबें हैं, बस उसमें ध्यान रखो, बस हमारा ज्ञान ये वो हमारे सब्जेक्ट ही नहीं है। सूरज भाई कहते हैं ना ये हमारे सब्जेक्ट ही नहीं है, वो हमारा सब्जेक्ट क्या है, ज्ञान योग मनन चिंतन अध्ययन मुरली की चर्चा डिस्कशन योग योग में प्रयोग तपस्या सेवाओं के नए नए साधन, क्या हम अच्छी अपनी सेवाओं को कैसे आगे बढ़ाए, कैसे स्व उन्नति करें। बाबा ने एक जगह ये भी कहा स्व उन्नति और सेवा की वृद्धि ये जब होगा तब समाप्ति होगी। आज की मतलब ये भी एक पॉइंट है, तो स्व उन्नति कैसे करें ये भी बस इसी के बारे में सोचना, दूसरा और तुमको क्या करना है, सेवाधारी बहुत है, सेवाधारियों के लिए खाना, तो तुमको और दूसरी चीज में जाना ही नहीं, उसमें गए कि फंसे, फिर वो एक बार उसमें फंस गए उसमें से बाहर निकालना, निकलेंगे तो टाइम लगेगा,
टाइम चला जाएगा,
टाइम चला जाएगा। अच्छा ओम शांति।